Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us with your queries on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. These are Delhi numbers, so listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Subodh Mishra.
Dhanyavad Anubha aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
थैंक यू.
पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सुबोध. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू एनर्जी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स अमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस डिक्लाइंड लास्ट वीक. And domestic investors to focus on geopolitical developments, crude oil prices and FII outflows for queues next week.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की. पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा भू राजनीतिक गतिविधियों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की धन निकासी पर.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
जी अनुभव, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति और देशभर में कुशल वितरण सुनिश्चित करना था. इसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. आज स्नेहा, हम देखें पूरी दुनिया में जो हालात हैं, जिस तरह की हाल बनी हुई है अभी, खास करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो रहा है.
हाँ जी.
कुछ शिप्स निकल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं. इनको लेकर अनिश्चितता का जो अभी का माहौल है, इसमें आपकी राय में हमारे जो बहुत छोटे निवेशक हैं जिनका कुछ मान ले हम 5,000 रुपए से कम का SIP कर रहे हैं जो लोग, उन्हें अभी क्या रुख अपनाना चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट रुख जो उन्हें अभी अपनाना चाहिए वो ये है कि जो वो करते चले आ रहे हैं वो करना छोड़े नहीं. क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आती है, जो पहला ख्याल दिमाग में आता है वो आता है कि पैसे सुरक्षित हैं, यानी इतनी मुश्किल से तो वो 5,000 बचा पा रहे हैं कि वो इन्वेस्ट कर पाए, वो सुरक्षित है या नहीं. तो जितना भी अनसर्टेनिटी है वो किसी ना किसी तरीके से हमेशा मार्केट में बनी रहती है, कभी वो हल्ला ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, बट जब आप धीरे धीरे ये SIP करते रहते हैं तो जो समय की इंपॉर्टेंस होती है ना वो आपको कुछ टाइम के बाद ही पता चलती है, तो बने रहना इस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब इस समय बेचकर निकलने की कोशिश ना करें।
ना करिए बिल्कुल।
बट नेहा of course Sneha, this is of course like Subodhji said ki we are talking about the people who have you know a small kitty which they use for investment. What about those aggressive investors, you know, who are looking to bottom fish right now because the markets are low, we see a lot of volatility in the market every day, one day it goes up, the other day it's like more than 1,000 points down. So for those who are actually looking to make some money out of it, the aggressive investors, what is your suggestion for them?
So for aggressive investors, they understand one important point that volatility either upwards or downwards has always been there and they try to thrive on it. Thus the aggressive nature, the risk that comes into play. So for them, it is like, let's say the best of both worlds, because if they have the kind of surplus, one thing that they need to keep in mind is the fact that all of this aggressiveness is contained to, let's say, some portion of the portfolio, because we never know what happens next and you really don't want all your money to, you know, take that hit, or let's say the positive aspect also, while you want your portfolio to take the positive aspect in a bigger way. Mm-hmm. Yet the precaution here becomes dealing with that aggressiveness in a way that can be handled well when your life situation becomes tough. So for your goals and for your, let's say, non-negotiable goals, that understanding, that clarity is very important. Other than that, of course, asset allocation, diversification, even in that limited portion is important. And that should be on top of the mind for any kind of investor.
Right.
जी, आगे बढ़ने से पहले हम श्रोताओं को याद दिला दें कि हर रविवार की तरह हम आज म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-04-81 और 2371-7106।
Subodh, let me also repeat the numbers for our listeners who are waiting to contact us. The numbers are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. Listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011. And we have our first listener online with us. That's Rinku
जी.
From Bihar. Rinku, कार्यक्रम में स्वागत है. अपने सवाल पूछे.
नमस्ते मैडम.
नमस्ते, अपना सवाल पूछे.
मैडम, मैं SIP करना चाहते हैं. किसी बैंक में मैं गए थे, बेगूसराय जिला में पड़ता है, कोई ग्रामीण मोहल्ला पड़ता है, तो मैं उस बैंक में SIP में 500 का चाहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, तो कहता है कि यहाँ पे नहीं होगा, 2000 का होगा, यही थोड़ा जानकारी चाहिए.
जी रिंकू जी, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि इतने से ज्यादा का नहीं हो सकता है? हो सकता है कि ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक लिमिटेशंस हो जो उनको उतना ही अमाउंट लेने के लिए अलाउ करती हैं. इसके बारे में मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से आप हम काफी बार आपसे ये बात कर चुके हैं, आपने पहले भी कॉल करा हुआ है कि कैसे करें, क्या करें, तो अब फाइनली आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पे आप एटलीस्ट ये 2000 करने का स्टार्ट किया जा सकता है. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप बस इतना ध्यान रखिए, जो वो फंड आपको दे रहे हैं उसमें यूलिप नाम का वर्ड नहीं आ रहा है, अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर इंडेक्स फंड है जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं. और आप मेरी राय ये रहेगी कि 2000 से ही सही आप वो स्टार्ट कर दीजिए.
एक्चुअली वो कह रहे हैं कि 2000 कम से कम करना पड़ेगा, ये 500 रुपए करना चाहते हैं.
अच्छा, ओके, फिर मैंने गलत समझ लिया. नहीं, 500 से भी बिल्कुल कर सकते हैं. हो सकता है कि फिर यहाँ पे वो रूल्स ऐसे हो जाएंगे कि वो अब वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, आप इतना तो हमें दीजिए ही,
मिनिमम.
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप मेरी राय ये रहेगी कि आप किसी और बैंक से अप्रोच करिए, या फिर आप एम्फी की वेबसाइट पर जाकर जहां पे आप रहते हैं वहां का पिन कोड डाल के, जो भी आसपास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप जैसे लोगों के लिए ही आता है, जो पहुंचना चाह रहे हैं फंड इंडस्ट्री में, एंट्री करना चाह रहे हैं, बट एक लिमिटेशन आ जाती है, तो आप वहां से अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संपर्क में आ सकते हैं जो आपको इसमें मदद करेंगे.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ नमस्कार मैडम, मार्केट सुंदर टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। मैम मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा एटीएस से इन्वेस्टेड हूँ और मेरा 7 ईयर से मैम मैं एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ में मेरा 1000 रुपीज का सीट था और लास्ट ईयर मैंने आपका प्रोग्राम सुन के ही केवल मेरा एक ही फंड में एक्सपोजर था और अब मैंने फ्लेक्सी कैप और मिड मल्टी कैप ये फंड सिलेक्ट किए हैं तो मैम मैंने इस फंड को स्टॉप कर दिया है और इतनी अमाउंट का एसआईपी मैंने फ्लेक्सी कैप और इसमें बढ़ा दिया मल्टी कैप में। तो मेरा मुझे उसको पैसे की लेने की जल्दी नहीं है रिडीम करने की तो मैं उसको ऐसे ही पड़ा रहने दूं, क्या ये बेटर ऑप्शन है, कृपया गाइड करें।
हाँ जी विवेक जी, एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि जो इन्वेस्टमेंट अभी आपको जिसकी जरूरत नहीं है उसको बिल्कुल मार्केट में बने रहने दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो वहां पे पड़ा हुआ है। उल्टा जब आपको जरूरत होती है तो जिसमें आपकी एसआईपी कंटिन्यूअसली चल रही है उनसे ना निकाल के उनकी कंपाउंडिंग को ना ब्रेक करके आप बिल्कुल उस फंड से निकाल सकते हैं जिसमें अभी एसआईपी चल नहीं रही है, तो आप बिल्कुल उसको बने रहने दीजिए। और ये आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि आपने एक फंड से ज्यादा फंड को अपने पोर्टफोलियो में लिया है सो दैट एक डाइवर्सिफिकेशन का जो पूल हो जाता है और एक ही फंड पे डिपेंडेंसी हो जाती है वो कम रहती है।
लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, दिस वन इज ऑल्सो कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। शोभित इज नाउ विद अस। शोभित वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, आई एम शोभित फ्रॉम दिल्ली। आई हैव वन क्वेश्चन विद टू पार्ट्स। I have been investing in mutual fund for a very long time, but recently I have entered into ETF also. But I just want to know the principal difference between the mutual funds and ETF and why there is a fee structure difference between the two. Thank you.
Right. Shobhit ji, the principal difference between ETF or mutual fund is how you buy each of these products. Underlying they both of them, let's say if equity ETFs and equity mutual funds offer you a basket of stocks, just that for ETFs you need a DMAT account because they are listed in the market just like let's say equity shares. So you need to have a DMAT account via which you can buy the ETFs. For mutual funds, of course, you would know the drill since you have been investing for a very long time. The expense ratio bit is, let's say, similar in both of the cases, which gets deducted from your NAV only. That is what my understanding is, and I can tell you just that.
जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो
हेलो जी, सवाल पूछें।
हाँ जितेंद्र जयपुर से बोलूं
जी।
मैडम ये बोला था कि आजकल अपना यूनिट गिफ्ट कर सकते हैं एमएस सेंट्रल के वेबसाइट से, मैंने देखा था। तो मैं जैसे अपना अकाउंट जो है म्यूचुअल फंड का सब क्लोज करके और वाइफ को ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो और अपना टोटल क्लोज कर दूंगा, तो रीजन क्या लिखो, रीजन 5 तरह का आ रहा उसमें, डिलीजन ऑफ होल्डर, ट्रांसफर टू सिबलिंग, नॉमिनेशन, गिफ्टिंग यूनिट, एडिशनल ऑफ ज्वाइंट होल्डर, 5 है, तो क्या रीजन क्या था?
जी जितेंद्र जी, गिफ्ट बिल्कुल आप कुछ 5-6 स्टेप्स में एमएफ सेंट्रल से कर सकते हैं। रीजन हमें वही डालना चाहिए जो मतलब आपकी सिचुएशन में फिट होता है कि आप वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं यूनिट्स, तो आप वही रीजन डाल दीजिए वहां पर।
जी स्नेहा, जैसे आप कह रही हैं कि जो रीजन जो उस जब आप गिफ्ट करने जा रहे हैं तो जो एक ऑलरेडी हमारे पास एक मेन्यू है जिसमें उसके कारण बताए हुए हैं, तो जो भी कारण इनको ज्यादा सबसे ज्यादा सूट करता है इनको वो चुनना चाहिए और वो रीजन डालकर, क्योंकि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट वही है कि इनको अपने म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर करने हैं किसी और को, तो कारण आप जो गिवन मेन्यू है उसमें से वो चुन सकते हैं।
उसी में से जो भी नियरेस्ट है टू योर।
जी
वही बात,
बिल्कुल जी। अगली खबर पे चलते हैं। मार्च के तीसरे सप्ताह तक विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार से 88,180 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ फेडरल रिजर्व के हालिया फैसलों से निवेशकों पर असर पड़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार मार्च में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारत के पूंजी बाजार से कुल 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने भारत के ऋण बाजार में 187 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। फरवरी में एफपीआई द्वारा किए गए बड़े निवेश के बाद ये भारी बिकवाली है। फरवरी में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये पिछले 17 महीनों में सबसे बड़ा मासिक निवेश था। उससे पहले जनवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 35,962 करोड़ रुपए निकाले थे, दिसंबर में 22,611 करोड़ रुपए और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए निकाले थे।
एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम दिल्ली अगेन। दिनेश कुमार इज ऑनलाइन विद अस। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
दिनेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है उनके साथ संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अभी अगले कॉलर है भोपाल से शंकर।
शंकर नमस्ते जी। नमस्ते मैडम सूरी। मैडम मेरा सवाल है ये सीकेवाईसी जो आजकल डिफरेंट लेवल हो रखे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज दे आर सेइंग कि आपका केवाईसी वेरीफाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो अजीब गरीब टर्म्स यूज करते हैं। फॉर दिस वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन न्यू फंड्स, सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस, नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन मैडम अबाउट दिस वॉलेटिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु मेक मनी इन वॉलेटिलिटी, इज देयर एनी फंड व्हिच मेक्स मनी इन वॉलेटिलिटी, वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दोस फंड्स व्हिच यू नो मेक मनी इन वॉलेटिलिटी, गोइंग अप और डाउन दे ऑलवेज मेक मनी।
राइट, सो शंकर जी यू आर राइट ऑन द पार्ट दैट terms like KYC validation and KYC registered have been coming in post one of the rulings that SEBI had released. So a validated KYC is simply let's say a golden ticket. It indicates that your PAN and Aadhaar both are successfully verified by the issuing authorities, and with this validation you can invest in any mutual fund. On the other hand, if your KYC is registered, it is like you know, you have the pass that you want to use to get through, but you ultimately, to be able to invest across the board, you need to get your KYC validated. That is the difference between the two. And this typically happens when you have used documents other than Aadhaar for your KYC. So a very simple way to go about it is that you are KYC registered while investing in a new AMC. Just once you need to go through the process again to get your KYC validated. Once done, you can, of course, across AMCs continue investing. So you will hit a roadblock when investing in new funds or with different AMCs. And it is actually very advisable to get your KYC validated so that this roadblock doesn't come your way every time when you are investing.
It's like having a passport, but to go to another country, you need to have your visa.
इनका एक और सवाल
जी वॉलिटिलिटी से मिला था कि किन फंड्स में वॉलिटिलिटी के बावजूद फायदा होगा।
बिल्कुल, सो एक जिस चीज के बारे में हम चर्चा हमेशा ही करते रहते हैं उसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। अब जहां पे इक्विटी मार्केट में वॉलिटिलिटी आ जाती है तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए या स्टेबिलिटी देने के लिए फिक्स्ड इनकम जो एक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको पोर्टफोलियो में अगर होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वॉलिटिलिटी से डील कर रहे हैं ऑन द वे डाउन। सो हाइब्रिड फंड्स जिस टाइप के फंड्स होते हैं मेरे हिसाब से वो एक ऐसे फंड्स होते हैं जब वॉलिटिलिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट एसेट एलोकेशन हमेशा पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो अगर तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज्यादा इक्विटी की तरफ अपना रुख रखिए पोर्टफोलियो का, और जहां तक बात डेट की आती है उसको लिमिटेड रखिए। बट जब ऊपरी मार्केट में प्रॉफिट चाहिए होता है और साथ ही साथ नीचे मार्केट में आपको नुकसान से बचना है तो प्रॉफिट पे थोड़ा सा हिट लेकर आप हाइब्रिड फंड्स में रह सकते हैं ताकि डाउन मार्केट्स को आप केटर कर पाए। और हाइब्रिड फंड्स अगर अलग से नहीं चाहिए तो बिल्कुल इक्विटी एलोकेशन आप फंड से अलग ले सकते हैं और अपने डेट पोर्शन के लिए आप अलग डेट फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी अगले कॉलर है मुंबई से भूपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
सर गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग,
मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ये जो गोल्ड के रेट इतने बढ़ रहे हैं तो क्या ये वॉर का रीजन है? अगर है तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है? नंबर दो, अगर वॉर खत्म हो जाता है तो गोल्ड के रेट क्या खत्म कम हो जाएंगे?
जी स्नेहा, आप जवाब दें, उससे पहले मैं बता दूं कि वैसे इस हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। सोना इस हफ्ते में 12.6% गिरा है और सॉरी चांदी 12.6% गिरी है और सोना भी 8.8% नीचे आ गया है
जी। सो जहां तक गोल्ड की बात है भूपेंद्र जी, गोल्ड का प्राइस एक्चुअली 2022 से ही एक सीधी डायरेक्शन में चलता ही चला आ रहा था, अभी थोड़े समय से पहले की बात अगर मैं करूं, और उसका मेन रीजन ये था कि एकदम से सोने ने एक ऐसा अप ट्रेंड ले लिया था, नॉट जस्ट वैल्यू में बट बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड। सो वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स ने उसको एक तरीके का डॉलर से रिप्लेस कर दिया था, जो एक यूनिवर्सल करेंसी हम डॉलर को मानते हैं कि अपने फॉरेन रिजर्व्स में लोग डॉलर रखते हैं ताकि कुछ जब परेशानी हो तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो चीज एक तरीके से गोल्ड ने गोल्ड में कन्वर्ट हो गई थी कि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिस वजह से उसके प्राइसेस या वैल्यूएशंस जिन्हें हम कहते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है और इस वजह से हमें वो बढ़ोतरी दिख रही थी। साथ ही साथ जब इक्विटी मार्केट जनरली व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ टर्मोइल, एक स्ट्रेस का फेस चल रहा होता है, तब हमने देखा गया कि गोल्ड यूजुअली एक तरीके का प्राइसेस उसके बढ़ते रहते हैं। अब वॉर खत्म हो गई तो ये रिवर्स हो जाएगा वो हम नहीं कह सकते हैं, पर कोई भी चीज जब उतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो मीन रिवर्जन डेफिनेटली होता है। कब होता है क्या होता है वो हमें पता नहीं, ज्यादा सही रहता है कि आप 5-10% तक ही अपना एक्सपोजर ऐसी एसेट क्लास में रखिए।
द नेक्स्ट कॉलर ऑन लाइन विद अस इज देवा फ्रॉम चेन्नई, बट बिफोर वी टेक योर क्वेश्चन देवा, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट न्यूज आइटम। एक्वा टाइटन, अ वेसल कैरिंग रशियन क्रूड ऑयल, हैज रीच्ड मैंगलुरु इन कर्नाटका। दिस कम्स आफ्टर द यूएस इश्यूड अ टेम्पररी जनरल लाइसेंस ऑन थर्सडे अलाउिंग द सेल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल already stranded at sea in an effort to stabilize global fuel prices and West Asia conflict. Another cargo ship carrying liquefied petroleum gas LPG from the US has arrived at the Mangalore port. Pyxis, pioneer cargo ship carrying LPG from the US state of Texas, successfully docked at the port. Earlier, an Indian-flagged LPG tanker Nanda Devi arrived at Vadinar port in Gujarat, becoming the second LPG carrier to reach the West Coast this week after Shivalik docked at Mundra port. And now let's take the question from Deva. Deva, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Deva, if you can hear us, do ask your question. Looks to be some technical glitch.
जी, अगले कॉलर के पास चले हम। हिमाचल से राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी जी, धन्यवाद। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे जो से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है तो इस निवेश में कैसे जोड़ सकती है, मेरा ये प्रश्न है।
महिला हो या फिर आदमी हो, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लेने का कोई भी डिफरेंट तरीका नहीं है। तरीका यही है,
ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की बात है।
अच्छा, सो वैसे म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस और जो अबिलिटी टू इन्वेस्ट होती है वो काफी ज्यादा अब बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज धीरे धीरे जा रही है। उसमें सबसे बड़ा जो एक रोल है वो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। तो अगर आप आई होप अभी डिजिटली भी इतना एडवांसमेंट हो गया है कि अगर आप amfi.in की वेबसाइट पर जाकर एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं तो आपके आसपास में भी, एकदम नजदीकी नहीं होगा बट आसपास में भी अगर कोई होता है जो आपको हैंड होल्ड कर सकता है, जो आपको पूरा समझा सकता है कि ये जब आप इन्वेस्ट करते हैं क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस रहते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं, या आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें ये कैसे फिट होता है, वो आप उनसे संपर्क में आ सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बट मैं जरूर बोलूंगी कि आप ये जो आपका ये थॉट आया है इसको बस एक थॉट नहीं रहने दीजिएगा, इस पे एक्शन लीजिएगा एंड यू नो ढूंढिएगा अगर आपके आसपास कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और या फिर आप ग्रामीण बैंक में भी जाकर ये पता कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
जी, एंड वी हैव अगेन गॉट, यस, सो देवा फ्रॉम चेन्नई इज ऑनलाइन विद अस नाउ। देवा, वेलकम टू प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो
जी देवा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
Yes, good evening, madam.
Good evening.
Okay, I have invested in various funds which I see with four or five banks. Okay, but I don't have email facility. I have put in equity fund, growth fund. Okay, so now since I don't know what to be done. I don't get any intimation. Which is the best way to do now?
There is a lot of disturbance in the lines. So,
but, if I understand it correctly, Deva wants to understand if he can get intimation of
how to.
How so, Deva, you can actually go to create an account at MF Central, which once you, you know, input your PAN number, all of your investments are sort of shown there, and you can get a consolidated view of where you are invested, how much the value is, how much you have invested, and in which fund, which asset class, which AMC. Other than that, you can, of course, also separately go on to onto CAM's website, which and therein you can input a few of your details and get hold of your consolidated statement as well.
जी, और देखें सोने चांदी का क्या हाल रहा पिछले हफ्ते. भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट रही. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व के फैसलों से सर्राफा बाजार भी अछूता नहीं रहा. लगातार तीसरे हफ्ते भी कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा. एमसीएक्स में मई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते 12.6% गिरकर 2,26,772 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. अप्रैल अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 8.8% की गिरावट आई और यह 1,44,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
Moving on, the Confederation of Indian Industry, CII, has said that India is taking swift and balanced steps to manage the economic impact of the ongoing West Asia conflict, with both the government and the industry working together to safeguard supply chains, energy security and overall economic stability. CII Director General Chandrajit Banerjee said that India has entered this challenging period from a position of strength. Across world markets, investors are assessing developments in the widening conflict between the US, Israel and Iran, disruptions to global shipping and recent comments from US President Donald Trump for further direction. Globally, crude oil prices are expected to be a major factor influencing market movements as tensions in West Asia have escalated, with Iran and Israel targeting each other's energy facilities. As the conflict enters fourth week, the Strait of Hormuz remains disrupted, keeping energy markets on edge. Domestic markets are expected to stay event-driven in the holiday-shortened week, influenced by these factors alongside FII outflows and rupee movement.
जी, और एक खबर अब खदानों से जुड़ी हुई है. कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी कल सातवें चरण की खनिज ब्लॉक नीलामी की शुरुआत करेंगे. इसमें कई राज्यों के 19 ब्लॉक शामिल हैं. इन ब्लॉक्स में स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, उर्वरक और रणनीतिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों के भंडार हैं. खान मंत्रालय ने बताया कि ये नीलामी ऑनलाइन तरीके से होगी. पिछले 6 चरणों में 46 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है. स्नेहा, अब आप 20 सेकंड में क्या राय देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखिएगा. अगर आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे मार्केट में आने का, तो अभी ही बिल्कुल सही वक्त है. नहीं तो सही वक्त कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है.
यानी बाजार से डरने की जरूरत नहीं है, गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है. आपने निवेश किया है तो गिरता हुआ जो आपको दिख रहा है अपना फंड, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन यूनिट्स की भरपाई करें.
जी,
स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद.
And before we close, look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs high-level meeting to review energy and fertilizer sectors amid West Asia conflict. Gold and silver price declined last week, and domestic investors to focus on geopolitical movements, crude oil prices and FII outflows for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
पाकिस्तान।